दोस्तों, आज हम जिस दौड़ में भाग रहे हैं वो कहीं ना कहीं रुककर देखना जरूरी है कि आज हम खुश हैं भी कि नहीं। जिस दौड़ में आज हम भाग रहे हैं, क्या उसकी मंजिल खुशी है या हमारा मकसद है, उसे हमें देखना है और फिर ही हमें एनालाइज करना है कि आज जिस प्रश्नों के उत्तर आज हम ढूंढना चाह रहे हैं, क्या वो हमें मिल भी रहे हैं या हम ऐसे ही दौड़ते जा रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। रुके, देखें और फिर जाने। इन्हीं कुछ सवालों के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर ओमकार जी। ओम शांति।
ओम शांति।
नमस्ते।
नमस्ते
भाई जी। खुशी, जिसके बारे में आपने कई सारे कड़ियों में कहा है, लेकिन आज जब हम देखते हैं कहीं ना कहीं उसके अंदर की एक खोखलापन होता जा रहा है, जैसे हम जानते नहीं है कि सही मायने में खुशी है क्या। क्योंकि वैसे तो हम कई सारे पदार्थ ढूंढते ही रहते हैं, चीजें ढूंढते रहते हैं, जैसे हमें छोटी छोटी चीजें, जैसे हम ड्रेसेस पहनते हैं, जैसे हम नई नई गाड़ियां खरीदते हैं, आज हम नए मकान खरीदते हैं, जैसे हम कई घूमने जाते हैं या कुछ भी करते हैं रिलेशनशिप्स के साथ में, आज घूमते हैं फिरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुशी जो एक मेन मूल मंत्र है वो हम भूल चुके हैं। हम जानते ही नहीं कि सही मायने में खुशी है क्या। हमें पता ही नहीं है कि हमारे लिए क्या नेसेसरी है और क्या है जो हमें जो हम खाली ऐसे ही करते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम उसका मतलब विदाउट एनी रीजन हम अपने लिए खरीद के पाइलअप करते जा रहे हैं, और एक तरफ होगा कि वो नेसेसरी है या एक होगा कि वो बेफालतू की चीज है। तो वो हमें जानना है कि क्या सही है और क्या गलत है।
देखिए, आज हम ये मान के बैठे हैं कि जितनी ज्यादा चीजें हमारे घर में आती जाएंगी उतनी ज्यादा खुशी हमें मिलेगी। आपने देखा होगा बचपन में जब आपको एक साइकिल खरीद के दी गई थी तो उस साइकिल ने आपको बहुत खुशी दी थी, लेकिन कितने दिन के लिए? थोड़े दिनों के लिए। थोड़े से आप बड़े हुए तो आपकी इच्छा हुई कि मेरे पास एक स्कूटर होना चाहिए, अब तो मैं कॉलेज जाती हूँ तो कॉलेज बस में जाने से बेटर है कि मैं स्कूटर पे जाऊं, तो अब आपके पास स्कूटर आ गया तो आपको कुछ दिन के लिए हैप्पीनेस मिली। अब स्कूटर की इच्छा पूरी होगी, अब आपको लगा कि स्कूटर से कभी बारिश आती है, कभी धूप होती है, क्यों ना एक कार हो, तो अब आपने कार के लिए एफर्ट्स किए, कार की इच्छा रखी, अब कार भी आ गई।
तो वो तो कहीं ना कहीं हम प्रोग्रेस कर रहे हैं ना, तो इसमें गलत क्या है?
कि अच्छी बात है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अब कार भी आ गई। अब देखिए, कार पहले छोटी वाली आई, अब आपने दूसरों को देखना शुरू किया कि जो कार आपके पास है वो तो बहुत छोटी वाली है, तो आपने सोचा कि बढ़िया वाली कार भी हो, तो फिर आप धीरे धीरे बढ़िया वाली कार की तरफ मुड़ गए।
हाँ, क्योंकि हम अपडेटेड रहना चाहते हैं,
हम नई से नई चीजें लाना चाहते हैं, हम नई से नई चीजें अपने पास इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि हम अपने कम्फर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं। ये सारी चीजें हमें आराम देती हैं, जितने दिन तक ये हमारे पास हैं तब तक हमें आराम देती हैं। लेकिन आज हम, अब बड़ी कार भी आ गई, लेकिन आपने देखा कि उसमें भी एक लिमिट है कि किस कार को आप बड़ी कार कहते हैं। 10 लाख वाली कार को बड़ी कह रहे हैं, 20 लाख वाली की कह रहे हैं, कि 1 करोड़ वाली को कह रहे हैं, या 10 करोड़ की जो नई कार आजकल इंडिया में आई है बाहर से उसकी बात कर रहे हैं। अब वहां की एक लिमिट, एक लाइन तो होगी ना कि आपने कहां तक जाना है। मान लो बड़ी से बड़ी कार भी आ गई, फिर आप सोचोगे आपकी इच्छा फिर भी पूरी नहीं होगी, फिर आप सोचोगे मेरे पास अपना चार्टर्ड प्लेन होना चाहिए, तो आपकी इच्छा और आगे बढ़ेगी। आप दुनिया में कहां तक जाओगे इच्छाएं पूरी करने के लिए? आप ये भी सोच लो कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। मान लो बन भी गए, आपने बड़ी मेहनत की, बन भी गए, लेकिन बनने के बाद आपको कब तक आप बने रहोगे, कितने साल तक सबसे अमीर बने रहोगे, और क्या वो उस वक्त बने रहने के लिए आप उस वक्त फिर खुश रह पाओगे या नहीं रह पाओगे? फिर हम क्या सोच लेते हैं कि मैं इतना बड़ा बन जाऊंगा, जब पैसा आ भी गया फिर सोचेंगे नहीं, खुशी तो फिर नहीं आती। खुशी तो तब आती है जब किसी इसके पास कुछ नहीं हो, जब नहीं था तब भी परेशान थे, अब आ गया तो भी परेशान है, क्योंकि हमने इसको रिलेट कर दिया मटेरियल पोजेशंस के साथ, हमने रिलेट कर दिया गैजेट्स के साथ, कि जितनी गैजेट्स हमारे घर में आते जाएंगे, नई नई चीजें आती जाएंगी, वो हमें खुशी देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप देखिए, कई लोग हैं साल में 3-3 बार मोबाइल बदलेंगे, बढ़िया से बढ़िया मोबाइल लाएंगे, कई लोग गाड़ियां भी वैसी ही बदलते हैं, कई लोग ड्रेसेस भी वैसे ही बदलते हैं।
अब ड्रेसेस तो जरूरी है ना, आज अगर मैं दूसरी पार्टी में जा रही हूँ, अब मैं एक फ्रेंड्स के साथ में घूमने जा रही हूँ, तो ऑब्वियसली मैं हर बार एक ही तरह के कपड़े तो नहीं पहन सकती ना।
हम पहने अच्छे से अच्छा कपड़ा पहने, साफ सुथरा कपड़ा पहने, बढ़िया से बढ़िया ड्रेसेस रखें, लेकिन आखिर कितनी? और जितनी ज्यादा आप चीजों के पीछे भागेंगे, जितनी चीजें आप रखेंगे, उतनी कॉम्प्लिकेशंस आपकी बढ़ने वाली है। आपका घर स्टोर हाउस बन जाएगा। आप अगर सामान खरीदते खरीदते बाजार से सामान ले लेके आपका घर इतना भर जाएगा कि आपको उन सामान को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए किसी ने कहा, मोर द पोजेशंस मोर द कॉम्प्लिकेशंस। सिंप्लिसिटी, जिसके पास थोड़ी सी चीजें हैं उनको संभालना आसान है, लेकिन जिसके पास मान लो एलमीरा में 50 ड्रेस पड़ी है, अब वो कंफ्यूज रहेगा कि कौन सी कब कब पहनूं, कौन से रंग मैच करता रहेगा, डे मैच करता रहेगा, कितनी कॉम्प्लिकेशन उनको संभालने की, रखने की और चीजों की। लेकिन आखिर आदमी को चाहिए क्या? महात्मा गांधी जी कहते थे कि भगवान हमारी आवश्यकताएं पूरी करता है, इच्छाएं पूरी नहीं करता, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। आपको चाहिए कितना? कहते दो धोती, एक धोती और दो रोटी, बाकी महात्मा गांधी कहते थे सब बकवास। क्यों बकवास? क्योंकि अगर हम ज्यादा अपने पास रख रहे तो इसका सीधा सा मतलब है कि जिन लोगों के पास वो चीज नहीं है, हम उनका हक अपने पास रख रहे हैं। जो कुदरत ने चीजें सबके लिए बनाई है, अगर हम किसी चीज को वेस्ट कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा रख रहे हैं, तो इसका मतलब जिन लोगों के पास वो नहीं है, हम उनका हक अपने पास रख रहे हैं। इसलिए हम थोड़ा सा अपने ऊपर को नजर रखें,
शायद हम ब्लेस्ड है ना, वी आर मोर ब्लेस्ड कंपैरेटिवली। आज जिनके पास नहीं है, आज हमारे पास जो भगवान दे रहे हैं, आज अगर मुझे, अगर मैं एवरी डे, अगर एवरी सेकेंड डे पे पार्टी में जाती हूँ, तो आज मुझे अगर किसी, ऑब्वियसली मैं सेम तरह के कपड़े तो नहीं पहन सकती, एवरी टाइम आई विल प्रेफर न्यू क्लोथ्स, तो ऐसे में मैं क्या गलत कर रही हूँ?
मैं गलत नहीं कर रही हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, अच्छी बात है। लेकिन इस दुनिया में जो ब्लेस्ड नहीं है उनके प्रति भी तो हमारा फर्ज है। हमने समाज का क्या ढांचा बनाया कि कैसे भी करके हमने तो इकट्ठा कर लिया, हमने तो अपना घर भर रखा है, चाहे कैसे भी किया, हमारी किस्मत अच्छी थी, भाग्य अच्छा था। लेकिन जो नहीं है जिनके पास, वो भी तो हमारे भाई बंधु हैं। अगर हम उनको ऊपर भी ध्यान दें, उनको भी अपना माने, उनको, वो भी तो हमारे देश के लोग हैं, वो भी तो हमारे देश के नागरिक हैं, जिन रिसोर्सेज के ऊपर हमारा हक है, जिसको हम अपने को ब्लेस्ड मान रहे हैं, क्या उनका हक नहीं है? उनका भी उतना ही हक है। वो सिंपल लोग हैं, वो चलाक नहीं है, वो पैसा कमाने के जो तरीके हमें आ गए, हमने कमा लिया, अपने को रिच बना लिया, शायद उनको वो नहीं आते, लेकिन है तो वो भी इंसान, क्या उनके प्रति हमारा फर्ज नहीं है? अगर उनका हक लेके हम अपने आप को ले रहे हैं तो ये भी एक न्याय नहीं है। हाँ, हम पार्टीज में जा रहे हैं, हमारी जरूरतें हैं, हमें अच्छी से अच्छी ड्रेस पहननी है, कोई बात नहीं, उतना रखिए, लेकिन एक लाइन आपको ड्रा करनी पड़ेगी, जो लाइन है आवश्यकता और इच्छाओं के बीच में। इच्छाओं का तो एंड ही कोई नहीं है, मैं बताऊंगा, आज एक इच्छा पैदा होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी आ जाती है। महात्मा बुद्ध भी कहते थे कि जो संसार दुखों का घर है, और दुखों का कारण क्या है? हमारी इच्छाएं, इच्छाएं मन को भटका रही है, इच्छाएं हमारे विचारों को छोटा कर रही हैं, इच्छाएं लोभ को बढ़ाती हैं, लालच को बढ़ाती हैं। ये करप्शन क्यों हो रही है? रिश्वतखोरी क्यों समाज में फैली है? इच्छाओं का ही तो अंत नहीं है। वो सोचते हैं कि जैसे हो कैसे हो मेरे पास पैसे आ जाए, और उसके लिए मैं चाहे कोई भी पापड़ बेलूं, पर मैं रिच बन जाऊं। एक तो है कि आप ईमानदारी से रिच बने हुए हैं, मेहनत से बने हुए हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप रिच हैं, आपके पास है उतनी ताकत, उसका अच्छा इस्तेमाल कीजिए ना, उसको जितने आपको चाहिए उतना इस्तेमाल कीजिए, बाकी उस चीज को दूसरों के भले में लगाइए, वो आपकी महानता होगी। और इच्छाओं के गुलाम कभी ना बनो, इच्छाएं के पीछे जो भागता है वो कभी भी सुखी नहीं बन सकता। इच्छाएं चाहिए हमें, थोड़ी थोड़ी इच्छाएं तो चाहिए, हमें आवश्यकताओं को पूरा करना है, इच्छाएं चाहिए, लेकिन कंट्रोल्ड वे में। कितनी, जो कितने वाला कॉन्सेप्ट है कि आखिर कहां तक मुझे जाना है,
तो वो लिमिट कौन तय करेगा?
वो लिमिट मुझे तय करनी है, वो मुझे सोचना है कि मेरे रिसोर्सेज कितने हैं, और उन रिसोर्सेज में से उनका बेस्ट वे में यूटिलाइजेशन मैंने कैसे करना है। और ये याद रख के कि जितना ज्यादा मैं उनको बढ़ाऊंगा इच्छाओं को बढ़ाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठी करने की सोचूंगा, वो मेरी कॉम्प्लिकेशंस भी उतनी ही बढ़ाएंगी। तो मैं उस वक्त ये याद रखें कि इच्छा हमें फालतू की इच्छा ना रखें, इच्छा रखें जरूर, इच्छा रखनी है तो अच्छा बनने की इच्छा रखो, इच्छा रखनी है दूसरों की मदद करने की इच्छा रखो, इच्छा रखनी है तो उस परमात्मा से मिलने की इच्छा रखनी चाहिए, इच्छा रखनी है तो मनुष्य से देवता अच्छा इंसान बनने की इच्छा रखो, एक अच्छे सिटीजन अपने देश की बनने की इच्छा रखो। लेकिन ये फालतू की इच्छाएं कि मैं इतना बना लूं, इतना बना लूं, इतना इकट्ठा कर लूं, करो लेकिन कहां तक, वो चीज जरूर याद रखो और उसके पीछे अपनी असली चीज जो है खुशी, उसको ना छोड़ो। इच्छाओं के जंजाल में ना फंसो, इच्छाओं के ऊपर एक क्रॉस चेक रखो कि मुझे आखिर कहीं ना कहीं तो सेटिस्फाई होना पड़ेगा।
बिल्कुल।
और इच्छाएं आपको सेटिस्फाई होने नहीं देंगी, और जो आदमी सेटिस्फाइड है वही सुखी है। संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। अगर आपके पास सब कुछ है, मान लो आपने 100 ड्रेस भी रख ली, लेकिन आप संतुष्ट फिर नहीं है, तो आपको खुशी मिलेगी
नहीं?
आपको लगेगा कि नहीं, मेरे पास ये ड्रेस नहीं रही, अब उस रंग की नहीं आई, वो वाली नहीं आई जो आजकल नई फैशन वाली आई है, ये तो ओल्ड हो गई। अब तो आप उसी जंजाल में उलझे रहोगे कि कौन सी खरीदूं, कौन सी पहनूं, कब क्या करूं। और जिसके पास सिंपल सी जिंदगी है, दो रोटी, दो ड्रेस, दो नहीं रखो, चार रख लो, दस रख लो, कितनी चाहिए हमारी, आप 100 ड्रेस भी रख लो सपोज, लेकिन पहनोगे कितने एट ए टाइम?
वन एट ए टाइम
पहने तो वन एट ए टाइम पड़ेगी। अच्छा, आप कितने भी जूतों की जोड़ियां ले लो, कितनी पहन सकते हो? वन एट ए टाइम। कितना आलीशान बंगला बना लो, समुद्र के बीच में बना लो, धरती के नीचे बना लो, ऊपर आसमान में 50 मंजिले उसकी बना लो, ऊपर ही आपके प्लेन रुक रहे हैं आपकी छत पे, ऊपर ही अंदर ही आपकी पार्किंग भी हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी बना लो, लेकिन आपको चाहिए कितनी आखिर? आपने सोना कितने बेड पे? वही 6 फुट 3 फुट का बेड, 3 फुट चौड़ा और 6 फुट लंबा। आप ऐसे तो नहीं कि 100 फुट लंबा बेड बना लोगे, बहुत बड़ा कमरा बना लोगे, कई कमरों में सोया करोगे, कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में। तो हमें चाहिए क्या? चाहिए बहुत कम, और हम खरीद बहुत ज्यादा रहे हैं, इकट्ठा बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और यही कॉम्प्लिकेशंस हमें प्रॉब्लम में डालती है।
जी भाई जी, आपने जैसे अभी कहा कि हमारी इच्छाएं जो हैं वो हमें लिमिटेड रखनी है, हमें अपनी आवश्यकताएं और इच्छाओं के बीच में, बहुत अच्छा कंपैरिजन आपने बताया, ये बात तो मैं समझ गई। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे अभी आज स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स जैसे एग्जामिनेशन के लिए तैयारियां कर रहे होते हैं, तो वो तो मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक डर सा रहता है कि पता नहीं हम पास होंगे कि नहीं होंगे, या मुझे बेटर नंबर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। वो जो चीज, जो फियर एक रहता है, उसे कैसे ओवरकम किया जाए?
बहुत दफा ऐसा होता है कि हम जब किसी एग्जाम में बैठते हैं, कुछ चीज करते हैं, तो दो तरह की सिचुएशन हमारे माइंड में रहती है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, डर रहता है। और डर के ऊपर कहा जाता है कि 90% जो डर है ना, फियर है, वो इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है, उसमें असलियत में कुछ होता नहीं। हम मन ही मन सोचते रहते हैं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो एग्जामिनेशन फीवर की आपने बात की, वो आ जाता है नॉर्मली, और डर का कारण है अज्ञानता, समझ की कमी और एफर्ट्स ना करना। अब जो स्टूडेंट सारा साल मेहनत करता है, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर रहा हूँ, मुझे पता है,
इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा, क्योंकि एज अ प्रोफेसर आप इसे बेटर टेक दे पाएंगे।
तो बच्चे जो सारा साल एफर्ट्स करते हैं, वो एग्जाम के दिन में रिलैक्स होके सोते हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं होती क्योंकि उन्हें सब कुछ आता है। और जो सारा साल नहीं पढ़ते, उनका क्या हाल होता है एग्जामिनेशन के दिनों में? इधर भागेंगे, उधर भागेंगे, नोट्स इकट्ठे करेंगे, कहीं से बुक्स खरीदेंगे, फिर अगर कोई गड़बड़ हो गई, कोई रिलेटिव आ गया, कोई दोस्त आ गया, तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक ही दिन है, अब वो दोस्त को अटेंड करें या पढ़ाई करें। तो उन लोगों को डर की फीलिंग आती है, और जिसने प्रेपरेशन की है, पहले से टाइम दिया है, मेहनत की है, उसने तो जस्ट 2 घंटे में रिवाइज करना है, और उसने फार्मूला याद करने हैं, ताकि डिटेल उसको पहले से ही पता है, और उसका एग्जाम बढ़िया होता है। तो डर से बचने का तरीका ये है कि हम डर को फेस करें, उसका जाने क्यों डर है, किस कारण से मुझे डर हो रहा है, और जिस कारण का है उसको ढूंढ के उसको दूर करने की कोशिश करें। हम ये नहीं सोचे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अगर आपने मेहनत की होगी तो सब कुछ अच्छे से अच्छा होगा। और मान लो अच्छा ना भी हो, आपने एग्जाम, मेरे पास स्टूडेंट्स आते थे, कहते सर हमने इतने अच्छे पेपर दिए, इतना अच्छा लिखा, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले हमारे पेपर ऐसे चेक करते हैं कि सबको फेल कर देते हैं, या जितने मार्क्स आने चाहिए थे उतने नहीं आते, या कई बार बहुत खराब लिखते हैं फिर भी पास हो जाते हैं, दोनों सिचुएशन होती है। तो मैं उनको कहता था कि आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में केवल एग्जाम देना और एग्जाम देने से पहले मेहनत करना, और बाकी पेपर चेक करना आपके हाथ में तो नहीं, पेपर चेक करने वाला कोई और है, उसकी टोटलिंग करने वाला कोई और है, उसको उस टोटल करने के बाद उसको डिस्प्ले करने वाला कोई और है, हो सकता है कहीं ना कहीं गलती हो, वो आपके हाथ में है ही नहीं, वो सिचुएशन आपके कंट्रोल में वो है ही नहीं है, तो आप वहां कुछ नहीं कर सकते। आपके हाथ में आपके एफर्ट्स है, कर्म है, उन कर्मों को आप अच्छा करो, आपका रिजल्ट अच्छा आए या ना आए आप खुले हृदय से उसको स्वीकार करो। आपके मार्क्स आपके एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं। एग्जामिनर का मूड ठीक है तो वो आपको अच्छे नंबर दे सकता
है, पर ये तो गलत है ना। मेहनत तो मेरी है, मैं पूरे साल मैं मेहनत करता हूँ, सिर्फ उनके मूड पर मेरा पूरा मार्क्स डिपेंड करता है।
वो फिर सिस्टम पे गलती है ना, वो सिस्टम ऐसा बना हुआ है। अब आप एक एक एग्जामिनर के पास तो जाएंगे नहीं, एक एक स्टूडेंट को मिलाएंगे नहीं। हालांकि कई यूनिवर्सिटीज में ट्रांसपेरेंसी आ रही है कि बच्चे को उसका पेपर दिखाया जाता है, उसके सामने उसको बताया जाता है, पर नॉर्मली नहीं दिखाया जाता। तो अब जिस तरह का एग्जामिनर होगा, एग्जामिनर की जिस तरह की थिंकिंग होगी, उसी आधार पे वो आपको मार्क्स देगा। चलो एग्जामिनर फिर भी ठीक है मान लो, उसके बाद टोटलिंग करने वाले ने गलती कर दी, अच्छा उसने अगले स्टेज पे कहीं गलती होगी, डिस्प्ले में गलती होगी, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसी सिचुएशंस होती हैं लाइफ में, उन्हें हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। हम तीन ए याद रखें लाइफ में, अगर आप परिस्थिति आपके पास आए, समस्या आए, अगर आप उसको अवॉइड कर सकते हो, आपको लगता है कि मैं इसको टाल के आगे बढ़ सकता हूं, तो फर्स्ट है कि आप उसको अवॉइड कर दो, आपको ज्यादा उसमें फंसने की जरूरत ना पड़े। अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते हो सिचुएशन को, दूसरा है कि आपके पास अगर ताकत है उसको अल्टर कर लो, उसको बदल लो, लेकिन बदलना आसान नहीं होता, दूसरों को बदलना, सिस्टम को बदलना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप अल्टर भी नहीं कर सकते तो थर्ड ए है, आप उसको एक्सेप्ट कर लो, आप उसको स्वीकार कर लो। कई बार परिस्थिति अगर आपसे ज्यादा ताकतवर है तो आप पीछे हट जाइए, एक्सेप्ट कर लीजिए, अपने आप को पावरफुल बना के फिर दोबारा से उस परिस्थिति से लड़िए और उसके ऊपर विजय पाइए। एक्सेप्टेंस पावर, स्वीकार करने की जो ताकत है ना, कई बार हमें लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने इतना कुछ किया। आप भी बात कर रहे थे कि मैंने तो अच्छा एग्जाम किया था, हाँ, मैंने तो लिखा था, अब एग्जामिनर ने पता नहीं कैसे चेक किया, तो हमें लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे पेपर के साथ ऐसा क्यों होता है। तो उस वक्त हम क्या सोच सकते हैं, हम ये ना सोचें कि वाई मी, हम सोचें जो हुआ, जब हम कुछ नहीं कर सकते पहले तो कोशिश करो चेंज करने की, लेकिन जब हर जगह चेंज नहीं होता तो उस वक्त हम उसको स्वीकार कर लें और सोचें जो हुआ जैसा हुआ वो अच्छा है, मेरा हक मेरा राइट केवल कर्म करने पे है, मैं कर्म बढ़िया से बढ़िया कर सकता हूं लेकिन रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं होता। रिजल्ट के लिए लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर जो रिजल्ट बनाते हैं, तो हम अगर स्वीकार कर लेंगे तो हमारे लिए वो सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। मैं एक आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, असली में जो हुई है 2001 में कच्छ भुज में 26 जनवरी के दिन बहुत बड़ा भूकंप आया, याद होगा आपको।
जी बिल्कुल,
गणतंत्र दिवस का दिन था और इधर भूकंप आया, सवेरे का टाइम था, बहुत नुकसान हुआ था। तो उसमें हमारी संस्था के लोग वहां सेवा के लिए माउंट आबू से गए थे, वहां पर वो गांव में जाकर लोगों को घर बनाने में और चीजें करने में मदद कर रहे थे। तो उन लोगों ने वहां देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति भी उनके साथ आकर काम में हाथ मटाता है। उन्होंने पूछा ये बुजुर्ग व्यक्ति कौन है, जरा परिचय तो ले। तो एक ने उनसे पूछ लिया कि दादाजी आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप कहाँ से हैं, आप यहाँ हमारे साथ काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, आप कहाँ से हैं। तो उस व्यक्ति ने बताया कि पास में ही मेरा एक गाँव है और उस गाँव में 26 जनवरी के दिन जिस दिन भूकंप आया, मैं अपने घर में अपने बच्चों के साथ वहां रहता था। तो मैं मॉर्निंग में खेतों में चला गया। मॉर्निंग में खेतों पे जाकर मैं वहां काम कर रहा था और मेरे तीन बेटे थे और उनका पूरा 15 का परिवार था, वो सारे के सारे घर में थे। उन्होंने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना के लाना था और मैंने खेतों में वो खाना था। मैं खेतों में था, वो घर में थे। इतने में भूकंप आया और वो 15 के 15 लोग वही बिल्डिंग के नीचे आके मर गए। तो जैसे ये बात हमारे भाइयों ने सुनी
जी,
उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि आपके सारा परिवार नष्ट हो गया भूकंप में, आप अकेले ही बचे हैं। कहते हैं हाँ मैं अकेला ही हूँ। तो उन्होंने हैरानी से पूछा कि आप तो यहाँ फिर सेवा भी कर रहे हो साथ में आके, आपको कोई दुख, आपको कोई कष्ट, आपको इतनी बड़ी घटना, भयंकर हादसा आपके साथ हुआ है, तो ये कैसे? तो उसने कहा कि पास मैंने जब ये घटना घटी तो मेरे पास दो सिचुएशंस थी। या तो मैं रोता पीता परेशान होता कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे सामने मेरा सारा परिवार नष्ट कर दिया, मैं रोता और उदास होके अपनी जिंदगी भी खराब करता। दूसरा मेरे पास था स्वीकार करने की सिचुएशन को, स्वीकार करने का एक फार्मूला। तो मैंने सोचा कि जो मेरे साथ हुआ वो मेरे किसी पूर्व में किए हुए पाप कर्म का फल था, जो मेरी आंखों के सामने ही मेरा पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। लेकिन मैं सेवा अब इसलिए कर रहा हूं, मैं आगे के लिए पुण्य कर्म इकट्ठे करना चाहता हूँ, मैं लोगों की दुआएं लेना चाहता हूँ, लोगों के काम आना चाहता हूँ, उनका भला करना चाहता हूँ। देखिए वह कितनी बड़ी सिचुएशन, और उसने उसको स्वीकार किया। स्वीकार किया तो वो व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं हुआ, वो अंदर से स्टेबल था। तो
लेकिन इतनी स्ट्रेंथ आती कहाँ से, इतने बड़े इतनी बड़ी पेन और इतना बड़ा लॉस उनका हुआ है। ये बहुत आसान है कहना, लेकिन जब हम करने को जाते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। अपने सभी लोगों को एक साथ खो देना और फिर उसके बाद में उठ करके दूसरों की मदद करने के लिए चल पड़ना, ये कहाँ से, ये स्ट्रेंथ कहाँ से आती है?
ये स्ट्रेंथ इनर स्ट्रेंथ से कहते हैं, आंतरिक शक्ति, कि हम अंदर से अपने आप को इतना मजबूत बनाए कि कुछ भी हो जाए हमारे साथ, कितना भी भयंकर हादसा हो जाए, कोई हाथ काट दे तलवार से, सिर भी काट दे, लेकिन हम फिर भी डिस्टर्ब ना हो, ऐसी ताकत के लिए हमें अंदर से अपने आप को एम्पावर करना होता है। मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए इसके लिए, ये केवल सुनने की बात नहीं।
हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम इतने बड़े लॉस से गुजर रहे होते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग पेन रहता है, जैसे अपने आप को पूरी तरह से अकेला महसूस करते हैं, जैसे सब कुछ एक साथ में अपने हाथ से बिखर जाता है। ऐसे में जैसे अभी आज भी किसी के घर में अगर किसी की शरीर छोड़ते हैं कोई, तो एक घर का एक माहौल ही एकदम उदास सा हो जाता है, कोई जानता नहीं है कि किस तरह से उस लॉस को भरा जाए। तो ऐसे में जिनके घर में शरीर छोड़ते हैं लोग, तो उनके लिए भी आपकी क्या राय है?
मान लो किसी के घर में किसी की डेथ हो गई, एक डेथ है कि आपकी नेचुरल जिस स्टेज पे होती है, बुढ़ापे में आती है, तब आदमी इतना दुखी नहीं होता, सबको पता है कि जाना है। एक है कि किसी की यंग एज में ही डेथ हो जाती है, किसी का एक बेटा था वो जवानी में चला गया, तो उस वक्त ऐसा सदमा आदमी को लगता है कि वो घबरा जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। उस वक्त भी वही इनर स्ट्रेंथ हमें चाहिए। एक तो सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की ताकत चाहिए कि हम सिचुएशन को समझें कि जो हुआ है उसके पीछे क्या कारण है, और जो हुआ है अब उसमें मैं क्या बेस्ट कर सकता हूं। एक तो है कि मैं सिर पकड़ कर रोता रहूं, और एक है कि अब मैं उससे कोई बेस्ट ढूंढ के अपने आप को कोई ना कोई अच्छा थॉट दे के कि जिस व्यक्ति ने जाना था उसका कर्म जितना था, जितना उसका यहाँ पर पार्ट था इस दुनिया में, उसने बजाया और वो चला गया। अब ड्रामा में आप देखिए, कोई किसी का प्ले में पहले खत्म हो जाता है रोल, किसी का बाद में होता है। अब हम सोचे कि उसका हिसाब किताब, उसका हमारे साथ जो भी था वो अब पूरा हुआ, इसलिए वो अगली यात्रा में चला गया। हो सकता है कि उसको भगवान ने उससे कोई और अच्छा काम कराना हो, यहाँ से अच्छी रोल उसको देना हो, तो हम पॉजिटिव सोच सकते हैं। लेकिन हम वो नहीं सोचते, हम ये नहीं सोचते कि वो गया, हमें दुख इसलिए होता है कि उससे जो हमें मिलने वाला था वो गया, जो उससे हमें प्राप्ति होने वाली थी। मान लो किसी के घर का कोई अर्निंग हैंड है वो चला गया, तो हमें ये असली लॉस ये नहीं कि वो गया, असली लॉस हमें ये लग रहा है कि अब हमारा क्या होगा, जो पैसे कमाई करके आ रहे थे वो हमें कौन देगा, हमारा बेटा चला गया अब बुढ़ापे में हमारी सेवा कौन करेगा, है अपना स्वार्थ, तो हम अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं। और हम सोचे कि नहीं, वो गया, उसका रोल, उसकी भूमिका समाप्त हुई, उसे अब एक नया पार्ट बजाना है और नया पार्ट उसका ही हो सकता है यहां से अच्छा ही हो। हम उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, घबराए नहीं, कुछ भी हो जाए, हमने जिंदगी में अकेले भी रह सकते हैं, हमारे पास हमारे रिश्तेदार संबंधी हो या ना हो, मेरे पास पैसा आए या ना आए, इच्छाएं पूरी हो या ना हो, कुछ भी हो जाए मैं खुश रह सकता हूँ, ये विचार अपने आप में आपको ताकत देगा, मुझे इन चीजों पे डिपेंडेंट नहीं होना है। उस वक्त थोड़ा सा अपने आप को चैनलाइज करने की जरूरत है, माइंड की प्रोग्रामिंग करने की जरूरत है, और वो प्रोग्रामिंग तब होती है जब अंदर से हम पॉजिटिव पहले से ही रहते हैं, ये आदत अगर हम डाल लें पॉजिटिव रहने की, कि मुझे पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिविटी के लिए एक सिंपल सी बात है मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन, जो हम यहाँ सीखते हैं, दूसरों को भी सिखाते हैं, कि वो जब हमारा मन का कनेक्शन उस परमात्मा के साथ जुड़ता है तो हमारी एनर्जी पॉजिटिव वे में चलने लगती है, हमारी माइंड की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग हो जाती है, फिर हम कुछ भी हो जाए उस सिचुएशन में भी पॉजिटिव सोचते हैं। राजयोग हमें सही सोचने, सही बोलने और सही कर्म करने की कला सिखाता है। कैसे उस सिचुएशन में पॉजिटिव रहें, उसके लिए हम राजयोग मेडिटेशन को अपने जीवन का अंग बनाएं, तो ये चीज बहुत आसानी से हमारे जीवन में आ सकती है।
बहुत अच्छा भाई जी, एकदम सही कहा आपने। कहीं ना कहीं हमारे जिंदगी में जो खुशी है वो हम देखते हैं कि लोगों से जोड़ देते हैं, हम लोगों से, वस्तुओं से, हमारी इच्छाओं से हम जोड़ देते हैं, लेकिन हमें अपनी इच्छाओं में और आवश्यकताओं में डिफरेंस को समझना है। जब हम वो समझने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें अपनी जिंदगी को कंट्रोल में ला सकते हैं। तो इसी बात के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ओम शांति।
ओम शांति।
दोस्तों, खुशी जिसकी बात हम इतने कड़ियों से करते आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही है। आज जो कंपैरिजन हम करते हैं उसका कोई भी तरीके से हमारे लिए वो लाभदायी है नहीं। आज हम चाहे तो हम अपने आप को सिर्फ अपने आप से कंपेयर करें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और आज जिस तरह से खुशी की बात हम कर रहे थे वो हमने कई सारी कड़ियों में किया है, लेकिन आज की खास बात ये थी कि आज कुछ भी लॉस हो जाए हमारे जिंदगी में तो भी हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। इसी बात के साथ हम आज के टॉपिक की समाप्ति करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय आपके शो में। ओम शांति।